ओम शांति। आप सभी विघ्न विनाशकों का, महागणपतियों का, वरद विनायकों का, बल्लालेश्वरों, गिरिजात्मजों, वरद विनायकों, महागणपतियों, सिद्धि विनायकों का शिव के इस आंगन में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भक्तों ने आपको सागर में विसर्जित किया, आपको नहीं, आपकी प्रतिमाओं को, और विसर्जित होकर आप शिव से मिलने के लिए इस पावन धरा पर पहुंच गए, जहां हर आत्मा आने को ललायित रहती है। उन्होंने विसर्जित किया, अब हमें सुंदर अवसर मिला है भट्टी में ये देखने का कि हमें क्या क्या विसर्जित करना है, और साथ ही सुंदर शिव से मिलन का। तो ऐसा सुंदर जो सौभाग्य और अवसर आपको प्राप्त हुआ है इस मधुबन पावन भूमि में आने का, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार पुनः दिल से सभी मधुबन निवासियों की ओर से, ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत। दीदी हमारे बीच थोड़े समय में पहुंचेंगे, लेकिन तब तक आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मधुर वाणी ग्रुप को। जैसे हर सुबह की शुरुआत बाबा से मिलन से होती है हमारी, वैसे ही हमारे हर भट्टी की शुरुआत मधुर वाणी ग्रुप के सुंदर गीत से होती है। मधुर वाणी ग्रुप, हमारे सतीश भाई जी, आप सभी बहुत अच्छी तरह अवगत हैं, बाबा के सुंदर गीतों की रचना करते हैं। साथ ही नितिन भाई जी और अबू धाबी से आज हमारे बीच सुनील भाई भी हैं, आप सबका दिल से अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। तो आइए आमंत्रित करते हैं अपने त्रिमूर्ति भाइयों को स्वागत गीत लेकर आप सबके लिए।
बारिशों में आप बारिशों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हरी भरी इन वादियों में प्यारा ज्ञान सरोवर है, और ज्ञान सरोवर में भट्टी का मौका मिला मनोहर है। सांता क्रूज ने तब का सुंदर अवसर ले लिया, और खुशियों के झूले में झूलता है जिया। दिल कहे बाबा शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया और शुक्रिया।
प्यारा ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर में भट्टी का मौका मिला मनोहर है। सांता क्रूज ने तप का सुंदर अवसर ले लिया, सांता क्रूज ने तप का सुंदर अवसर ले लिया। खुशियों के झूले में झूलता है जिया, दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया।
अभी आप तालियों से अभिनंदन कर सकते हैं अपना।
ज्ञान सरोवर में मन का प्यारा कमल है खिलता, ज्ञान सरोवर में मन का प्यारा कमल है खिलता। यहाँ पे निर्मल निर्मला दीदी का प्यार मिलता, यहाँ पे निर्मल निर्मला दीदी का प्यार मिलता। जो भी आया बाबा ने आंचल में समा लिया। सांता क्रूज ने सबका सुंदर अवसर ले लिया। खुशियों के झूले में झूलता है दिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। मीरा बहन तो मीरा है मगन मिलन में रहती। मीरा बहन तो मीरा है मगन मिलन में रहती। खुद भी उड़ती रहती है सबको उड़ाती रहती। खुद भी उड़ती रहती है सबको उड़ाती रहती। शोर छुड़ा कर मुंबई का मधुबन में बुला लिया। सांता क्रूज ने सबका सुंदर अवसर ले लिया। खुशियों के झूले में झूलता है दिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। अंतर्मुख हो आत्मा में शक्तियां भर ले। अंतर्मुख हो आत्मा में शक्तियां भर ले। ज्वालामुखी भट्टी से सारे पाप भस्म कर ले। ज्वालामुखी भट्टी से सारे पाप भस्म कर ले। बादलों ने बादल जैसा फरिश्ता बना लिया। सांता क्रूज ने तप का सुंदर अवसर ले लिया। खुशियों के झूले में झूलता है दिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया।
जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने त्रिमूर्ति भाइयों का। और बाबा का तो शुक्रिया, हमारे भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने सुंदर शब्दों की माला आपने पिरोई कि कैसे हम इस तपोभूमि में आकर तप करें। कैसे दीदी ने, मेरा दीदी ने आपको मुंबई के शोर से निकाल कर यहाँ मधुबन में ऐसे शांत माहौल में आने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया। सचमुच हमारी दीदियाँ हम सब के लिए कितना सोचती हैं हमारे कल्याण के भाव को लेकर कि हम कैसे उन्नति करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे बाबा से जुड़े रहें, कैसे संपन्न और संपूर्ण बने। सचमुच ऐसी दीदियां हमारे सामने मंच पर विराजित हैं, तो एक हाथ की ताली से जरूर हम इनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं जो अपने अमूल्य समय से समय निकालकर इतने व्यस्त होते हुए भी यहाँ 3 दिन 4 दिन आपके साथ साथ रहकर भट्टी करेंगे। हमारी टीचर्स बहनें भी सेंटर में इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी यहाँ तप के लिए पधारी हैं। तो देखें दीदियां भी इतने वर्षों तक तप करने के बाद भी अभी भी तप के लिए जो लगन है उस लगन से हम सबको प्रेरणा लेनी है और हमें भी इन 3-4 दिनों में बहुत गहराई से तप और साधना करनी है। अब इन अगले 3-4 दिनों में हम क्या करेंगे, क्या करना है इस भट्टी का, क्या लक्ष्य और उद्देश्य हो हमारा, इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ आदरणीय सुमन बहन जी की ओर। सुमन बहन जी बाल्यकाल से ही बाबा की गोद में पल रहे हैं। जैसे ही आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसके पश्चात आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। तब से देश विदेश में यात्रा करते हुए आप सभी को बाबा का सुंदर ज्ञान दे रही हैं, बाबा से जोड़ रही हैं। एजुकेशन विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अनेक जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं स्पेशली ज्ञान सरोवर में, उसकी सारी देखरेख, उसका कोऑर्डिनेशन आपके ऊपर होता है। तो इस भट्टी का भी सुंदर जो आयोजन हुआ है, इसमें जो क्लासेस होंगी, उसकी दिनचर्या होगी, तो बहुत समय पहले से ही बहन जी इसमें रहती हैं कि कैसे एक एक हमारे बड़ों की सुंदर पालना क्लासेस आपको प्राप्त हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप यहाँ से भरपूर होकर के जाएं। तो हर भट्टी का लक्ष्य देकर, मैं बहन जी के लिए ही कहूंगा कि हर भट्टी का लक्ष्य देकर राह बताती हैं आप, एक बाबा की याद में सबको टिकाती हैं आप। आपकी अथक सेवा देख बाप दादा भी मुस्कुराते, तभी तो इस ज्ञान सरोवर बगिया के सुमन आप कहलाते। तो एक बार सुमन बहन जी के लिए हम जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करते हुए सुनेंगे कि हम अगले 3 दिनों में क्या करेंगे, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य।
ओम शांति। मंचासीन आदरणीय मीरा दीदी, आदरणीय कमलेश बहन, संजय भाई, रुपेश भाई, और थोड़े ही समय में हमारे बीच होंगे हमारे परमादरणीय दीदी निर्मला दीदी और सभा में उपस्थित मुंबई, सांता क्रूज, भटवाड़ी और कुछ लोग कोलकाता से भी आए हैं और भी कुछ जगह से आए हैं, सभी भाई बहनों का तहे दिल से आपके ही घर में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पूना से भी आए हैं, बहुत सुंदर मौका हम सभी के लिए है बाबा के इस ज्ञान सरोवर में बैठ करके 3 दिन तप करने के लिए एक बहुत सुंदर मौका है। इसमें हमें क्या करना है, हमें खुद को सोचने की जरूरत है। बाबा हमेशा कहते हैं जब भी तपस्या करें लक्ष्य के साथ तपस्या करें, और बाबा ये भी कहते हैं जो ज्ञान यहाँ दिया जाता है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है। दूसरे जो भी सत्संग है वहाँ कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सामने हमारा लक्ष्य है। आज की मुरली में भी बाबा ने ये कहा कि ये जो पढ़ाई है श्री कृष्ण जैसा बनने की पढ़ाई है और स्वयं भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं। हम सभी का इतना बड़ा भाग्य है कि भगवान ने हमें चूज किया है भाग्य देने के लिए। पद्मा पदम भाग्यशाली है हम सभी, केवल भाग्यशाली या फिर सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली है क्योंकि भगवान खुद हमें चूज किया है। और यहाँ फिर से भाग्य को बढ़ाने के लिए एक सुंदर मौका हम सभी को दिया है। बहुत सारी आत्माओं का कि ये लक्ष्य रहता है या फिर इच्छा रहती है मधुबन, पांडव भवन या ज्ञान सरोवर में आकर के तपस्या करने की। शांति वन में तो बहुत बार आए हैं, बाबा से मिलने का प्रोग्राम भी हुआ है, तपस्या भी वहाँ की है, लेकिन यहाँ ज्ञान सरोवर में 25 साल से मेजॉरिटी मेहमानों के कार्यक्रम चले हैं, लेकिन कोविड के कारण से बीके भाई बहनों का कार्यक्रम यहाँ होने लगा है। और खास आप सभी ने शायद बहुत सारे तपस्या की होगी, बाबा को हुलना दी होगी, बाबा को प्यार किया होगा, तो इसलिए बाबा ने आप सभी को यहाँ बुलाया है। ऐसा है, ऐसा है। पिछले 1.5 साल में आप सभी ने एक्स्ट्रा अर्जी डाली होगी बाबा को, है ना? इतना तपस्या की होगी तो बाबा खुश होकर के आप सभी को यहाँ बुलाया है। त्याग तपस्या तो है ही, भाग्य के कारण से आप सभी आए हैं और यहाँ आकर के फिर से भाग्य बढ़ाएंगे। और भाग्य कैसे बढ़ाएंगे? तपस्या तो करेंगे ही, लेकिन तपस्या करने के लिए कुछ ऐसे नियम हैं, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो वो तपस्या फिर सिद्धि स्वरूप हो जाता है। इस भट्टी का जो टॉपिक ही रखा है, टाइटल ही रखा है, सिद्धि स्वरूप मौन भट्टी। गणपति का त्योहार हम सब दुनिया ने मनाई, गणपति को क्यों याद करते हैं? सिद्धि स्वरूप, सिद्धि विनायक कहते हैं। हम सभी आत्माएं भी विघ्न विनाशक है, सिद्धि स्वरूप है। तो अभी संगम युग में हम सिद्धि स्वरूप नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमारे साथ है तो अब नहीं तो कब नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ लोग, कुछ आत्माएं 3 साल से, 2 साल से ज्ञान में होंगे, कुछ 5 साल से, कुछ 10 साल से, या कुछ और भी ऊपर होंगे। इतने सारे पुरुषार्थ तो किए हैं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार रह गया होगा जो पुरुषार्थ करते करते भी उन संस्कारों पर हम विजय नहीं हुए होंगे। तो ऐसे कुछ संस्कार आइडेंटिफाई करें हर एक, तो उन संस्कारों पर हमें विजय पाना है। संस्कार परिवर्तन सिद्ध स्वरूप भट्टी, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। केवल यहाँ कन रस नहीं है ना, केवल हम ये कह दे हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लासेस बहुत अच्छे थे, वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अनुभव हुआ, लेकिन ये अच्छा अच्छा नहीं कहना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अच्छा बनना है। अच्छा बनना है तो संस्कारों को दग्ध करना है, संस्कारों को भस्म करना है ना? और उसके लिए आप सभी को बहुत मदद भी है, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण है। लास्ट ईयर अक्टूबर से लगातार यहाँ भट्टियां चल रही है, लगभग 1 साल हो गया। बीच में 2-3 महीना फिर से ब्रेक आ गया था सेकेंड वेव आने के कारण से, लेकिन लगातार भट्टियां चलने के कारण से ज्ञान सरोवर में यहाँ का वातावरण भी बहुत ही पावरफुल हो गया है। और दूसरा है, आप सभी जो यहाँ है, संगठित रूप से जब हम तपस्या करते हैं तो उस संगठन का भी बल होता है। और तीसरी बात है, महारथी भाई बहने आकर के हमें क्लास कराएंगे, दीदी निर्मला दीदी रोज मुरली सुनाएंगे, सूरज भाई जी रोज अमृत वेले में कमेंट्री के साथ योग कराएंगे, तो अलग अलग महारथियों के संग का अनुभव भी होगा, उनके वाइब्रेशंस, उनके पावरफुल वाइब्रेशंस की मदद भी मिलेगी। तो इतना सुंदर मौका हम सभी के लिए है, उस सुंदर मौके का पूरा फायदा उठाना है। जब भक्ति मार्ग में होता है ना, जब भगवान खुद साक्षात्कार दे दे, भगवान कुछ खुद प्रकट हो जाए, तो भगवान प्रकट हो जाने के बाद क्या पूछेंगे, क्या मांगेंगे भगवान से? हाँ, तो चने तो नहीं मांगेंगे, 2-4 कौड़िया तो नहीं मांगेंगे, है ना? तो यहाँ बाबा अभी संगम युग में पूरा खजाना खोल करके दे रहे हैं, इसमें फिर ये संकल्प नहीं करे मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे परिवार वाले ठीक हो जाए, मेरे परिवार वाले ज्ञान में आए, ये छोटी मोटी चीजें मांगनी नहीं है। जो भक्ति का संस्कार है मांगने का, उसको खत्म करना है। उससे भी ऊपर ऊंचा लक्ष्य रखना है। ऊंचा लक्ष्य क्या है? संस्कार परिवर्तन का। क्योंकि बाबा की मदद के बिना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकते, है ना? ये तो फैक्ट है। तो बाबा के इस ज्ञान से, बाबा के साथ योग लगा करके ही आत्मा एकदम सतो प्रधान सतयुग में जाने के लिए लायक बन सकती है। तो उतना ऊंचा लक्ष्य हमें रखना है और उसको ही हमें धारण करने का ये शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प हमें करने की जरूरत है। क्योंकि वैसे तो दुनिया में कहते हैं कि कोई भी संकल्प करते, विचार करते तो वो तो सिद्ध होता ही है, लेकिन ब्राह्मणों के संकल्प और ही पावरफुल है और ही शक्तिशाली है, वो तो सिद्ध होता ही है, है ना? तो इसीलिए अति शक्तिशाली संकल्प आप करेंगे, लक्ष्य रखेंगे और उसको फिर पूर्ण करने के लिए हम साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। और वो तपस्या करते समय किन बातों का लक्ष्य रखना है, तो तीन बातें हैं। सबसे पहले यही बात है कि मौन जरूर चाहिए, क्योंकि मौन के बिना साधना नहीं होती। हाँ, यहाँ आए हैं बहुत दिनों के बाद, बॉम्बे से बाहर आप सभी निकले हैं, तो बहुत खुशी की बात है। एक दूसरे से मिलेंगे, जुलने का मौका है, बातें करने का मौका है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कितने सालों से, कितने जन्मों से हम ये करते आए हैं ना, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, ये सब कुछ करते आए हैं। इस संगम युग का काल ये है, लोगों से मिलन मनाने को थोड़ा सा कम करें और भगवान से मिलन मनाएं। क्योंकि भगवान कभी और समय मिलेंगे नहीं, है ना? पूरे कल्प में तो नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी समय है बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए, और उसके लिए चाहिए खुद के साथ मिलन मनाना, खुद के साथ समय बिताना। तो इसीलिए ये तीन दिन हम खुद के साथ समय बिताएंगे और बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। तो उसके लिए हमें दुनिया से डिसकनेक्ट होने की जरूरत है। दुनिया के साथ कनेक्टेड होकर के हम स्वयं के साथ, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। अगर जोड़ेंगे भी अल्पकाल के लिए जुटेगा, फिर टूटेगा, जुड़ेगा टूटेगा। और ये जुड़ना टूटना होता रहेगा तो फिर जो शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। परमाधन्य दीदी जी हमारे बीच में हैं, हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करते हैं। तो दुनिया से डिसकनेक्ट होकर के स्वयं के साथ, बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए तीन मौन को धारण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मौन है मुख का मौन, यहां से डिसकनेक्ट, है ना? मुख से, एक बार मुख से डिसकनेक्ट हो गए तो फिर संकल्प शांत होना शुरू हो जाता है। साधना के पथ पर भी मौन की बहुत बड़ी महिमा है। मौन रखते हैं तो हम देखते हैं कि आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। वैसे तो कहते हैं यहाँ हठ योग नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये साधना भी जरूरी है। ये नियंत्रण और डिसिप्लिन में लाना, अपने कर्म इंद्रियों को डिसिप्लिन में लाना, ये भी जरूरी है। कि बचपन में मुझे याद है कि बाबा ने एक मुरली में बताया था कि हफ्ते में एक बार मौन की धारणा करें। तो मोहिनी बहन मधुबन में रहते, जब मधुबन में मैं नए नए आई थी तो मोहिनी बहन हर सोमवार को मौन के मौन रहते थे और साधना करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटरों में भी बहनों को हम देखते थे कि एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन या 21 दिन मौन की भट्टी में रह करके तपते थे, तपस्या करते थे। तो यहाँ आप सभी के लिए मौका है, क्योंकि किसी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बना बनाया भोजन मिलेगा, दिनचर्या सब सेट है, किसी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मन बुद्धि एकदम फ्री है। तो इसीलिए केवल अपने बारे में सोचना है, मौन रहना बहुत इजी है आप सभी के लिए। और दूसरा मौन है मन का मौन। केवल मुख के मौन से ये नहीं होगा, लेकिन मन का भी मौन होना बहुत जरूरी है। ये भी कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प ना हो, भले यहाँ से बोला गया है मौन रखने के लिए, अगर किसी को देखते हैं बात करते समय या कोई से कुछ ऐसे बातें देखते हैं, फिर भी वो भी संकल्प नहीं। पूरा फोकस मुझे क्या करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं, मन एकदम शांत। क्योंकि मन शांत होगा तो बाबा उसमें भरेंगे। मन हलचल है तो बाबा देंगे भी तो वो ग्रहण नहीं हो पाएगा। और सभी प्रकार के नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से मुक्त, और जो भी यहाँ सेशंस होंगे उसी पर हमारा ध्यान फोकस रहेगा। और ये भी संकल्प नहीं, ये भी वेस्ट थॉट्स नहीं कि इसके बजाय इसका क्लास होना चाहिए था, इनका क्लास, इस आत्मा का क्लास सुनने की इच्छा है, बहुत समय से YouTube में हम सुनते आए हैं इसका क्लास, ये भी संकल्प नहीं। क्योंकि जो भी हो रहा है बाबा उन्हीं के द्वारा आप सभी के झोली भरेंगे। अगर मन में व्यर्थ है, हलचल है, जो मिल रहा है उसका भी लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा को पता है आपको क्या चाहिए। हम तो केवल हम देखते हैं किसका क्लास ये क्या करना है, लेकिन बाबा को पता है किस आत्मा के द्वारा कौन से ज्ञान के रत्न निकलवाना है, किस आत्मा को किस चीज की जरूरत है उनको पता है, है ना। तो इसीलिए निसंकल्प होकर के जो भी कार्यक्रम है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे, समय पर हम सभी आकर के उसका पूरा लाभ लेंगे। और तीसरा मौन है मोबाइल का मौन। ये संभव है, संभव है। जब से आप उस मोबाइल को खरीदा है, जब से आप मोबाइल यूज करना शुरू किया, चाहे 8 साल 10 साल 12 साल से मोबाइल यूज कर रहे हैं, कभी आपने स्विच ऑफ किया है, उसको रेस्ट दिया है? हम सभी को रेस्ट की जरूरत है, मोबाइल को रेस्ट दिया है? एक दिन, एक घंटा, दो घंटा रेस्ट दिया होगा, लेकिन 4 दिन 3 दिन रेस्ट दिया है कभी? अभी मौका है, उसको भी रेस्ट दे दीजिए, उसको भी रिचार्ज होने का मौका दीजिए। तो ताकि फिर उससे आप फ्री होकर के आप फिर पूरा फोकस इसमें रख सकते हैं। कई बार बाबा ये भी कहते हैं, लास्ट जो हमारा पेपर होता है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा का, है ना। अभी चलते समय जो भी वर्तमान समय में मोह किसके साथ ज्यादा है, अपने आप को चेक करें। अपने बच्चों के साथ मोह है, अपने पत्नी पत्नी के साथ मोह है, परिवार वालों के साथ मोह है, साधनों के साथ मोह है, या फिर मोबाइल के साथ मोह है। मोबाइल के साथ मोह तोड़ने का समय है, वो साधन है बस, साधना के बीच में वो नहीं आ सकता। हम सभी मास्टर हैं, जब चाहे उसको यूज करे, जब चाहे उसको यूज न भी करे, उसके अधीन नहीं लेकिन उसके हम मालिक हैं, है ना? इसको चैलेंज के रूप में आप लें, 3 दिन चैलेंज, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस देते हैं दुनिया में, है ना? ये चैलेंज के रूप में लेकर के देखिए जरूर। आज रात को सोने से पहले जिनसे भी आपको बात करना है, कारोबार करनी है, सब कुछ करके सोने से पहले आप उस मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, और जब कल से जब आप रहेंगे तो फिर नेक्स्ट कब वो मोबाइल ऑन होगा? ट्यूसडे मॉर्निंग, मुरली क्लास के बाद वो मोबाइल ऑन होगा। ना फोन पे बात करना है, ना इंटरनेट ब्राउज करना है, ना फिर मेल्स देखना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक होता है ना, ठीक है मोबाइल में बात नहीं करेंगे लेकिन मेल्स देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, वो एक प्रकार से एडिक्शन, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, फिर उसमें उस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। तो इसलिए पूरा स्विच ऑफ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कितना आप बाबा से खजाना भर करके जाएंगे यहाँ। क्योंकि ये तपस्या जब ये 3 दिन करेंगे, ना केवल आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन संसार के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय क्या होगा सभी को पता है, क्या होने वाला है उस समय सभी आत्माओं को मदद की जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बाबा के बच्चे सकाश नहीं देंगे तो कौन देंगे? और अगर हम भरपूर नहीं है, सशक्त नहीं है, हमारे खजाने भरपूर भरे हुए नहीं है तो लोगों को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ना केवल अपने लिए लेकिन संसार की सभी आत्माओं के लिए हम इतना खजाना भरे कि आगे आने वाले दिनों में फिर इस भट्टी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ तो अभी तो आ गए हैं लेकिन आगे के समय में फिर से मधुबन आने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मिला तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो, है ना? तो इसीलिए ये आप सोचिए, बाबा हमेशा कहते हैं, आप हमेशा ये सोचो ये अंतिम दिवाली है, अभी आप ये सोचना ये अंतिम विजिट है मधुबन में, तो इस अंतिम विजिट में आपको कितना भरना है वो सोच के ऐसे भरपूर हो करके आप सभी अनुभव करेंगे और फिर वहां जाकर के आत्माओं को लाभ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जोरदार तालियां जरूर बजाएं। आज ताली बजाने की छुट्टी है, कल से तो मौन। जब बहन जी ने कहा मोबाइल का मौन तो कई लोग एक दूसरे को देखने लगे, अपने को नहीं देखा, अपने साथी को देखा, क्या विचार है। बहन जी ने चैलेंज शब्द यूज किया है तो मुंबई के जो महागणपति पधारे हुए हैं, कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है जरा हाथ उठाएं। कौन कौन दिल से हा? एक सुंदर सा चैलेंज है जरूर। थैंक यू वेरी मच। मैं तो चाहूंगा सभी लोगों ने गणेश जी को विसर्जित किया, हम 3 दिन के लिए मोबाइल को विसर्जित कर दें, तभी अपनी कमियों को विसर्जित करने में सक्षम हो पाएंगे, उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सचमुच पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। और हमारी पूर्वजों को तो 14 साल तपस्या करने का समय मिला, कम से कम हम 4 दिन तो ऐसी डीप और गहन साधना करें ताकि हम भी उस रस को पा सकें जो रस हमारे पूर्वजों ने चखा, दादियों ने चखा, और हमें हमारे लिए भी ये भट्टी एक सुंदर अवसर लेकर आया है। दीदियां कितने प्यार से आप सभी को यहाँ लेकर आई हैं इसी सुंदर अनुभूति के लिए। तो करेंगे ना सभी, एक बार फिर से जरा हाथ उठाएं, कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। दिल से जो करेगा सो पाएगा, चांस लेंगे चांसलर बनेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अनुरोध करूंगा कि सभी अपने मास्क ठीक से लगा लें, नाक पूरा कवर हो, और जहां 2 लोग साथ बैठे हुए हैं वो थोड़ा 1 सीट छोड़ करके बैठें, थोड़ा दूर दूर। साधक कैसे बैठते हैं? अलग अलग, बिल्कुल। हाँ, तो 1 कुर्सी छोड़ करके यहाँ हम केवल एक बाबा के साथ, मैं और मेरा बाबा। भले ही आप लोगों का एक दूसरे से बड़ा स्नेह है इसलिए बहुत नजदीक बैठे होंगे आप, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक पूरा ध्यान रखेंगे, हर सत्र में मास्क लगाकर रखेंगे, केवल यहाँ नहीं कैंपस में भी, और साथ ही डिस्टेंस बरकरार रखेंगे। ये भी हमारा एक अनुशासन है जिसको हम सबको पालन करना है। आइए अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ उनकी ओर, जो अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए हमारे बीच हैं, जिस कमल के फूल को ईश्वर ने बड़े प्यार से खिलाया, वही कमल बनकर फरिश्ता आज हमारे बीच है आया। बताइए कौन? आवाज कमलेश दीदी, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां कमलेश दीदी के लिए। हमारी कमलेश दीदी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सैट विंग की, यूथ विंग की कोर कमिटी में आप हैं, सांता क्रूज ईस्ट की जो सेवा केंद्र हैं आपके निर्देशन में बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, देश विदेशों की यात्राएं करते हुए आप बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी बाल्यकाल से ही बाबा की गोद में पलने वाली हम सबकी बहुत बहुत प्यारी, सबको कमल पुष्प समान जीवन, पवित्र जीवन बनाने की प्रेरणा देने वाली आदरणीय कमलेश दीदी हम सबको अपनी शुभ प्रेरणाएं इस भट्टी के लिए देंगी। कमलेश दीदी
ओम शांति। अति स्नेही त्यागी तपस्वी परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, राजयोगिनी आदरणीय मीरा दीदी जी, मंच पर उपस्थित हमारी सखी कहूं सुमन बहन, संजय भाई, रुपेश भाई और आप सभी भट्टी में पधारे हुए भाई और बहनों, जो मनाए विचार चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूं। ज्ञान सरोवर में भट्टी एक डायमंड अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। मुझे याद आता है कि इन दिनों में आमतौर से ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड रिट्रीट या कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम हुआ करता था और अनेक भाई बहन यहां से बेनिफिट लेकर जाते थे। जैसे सुमन बहन सुना रही थी कि यहां पर हमेशा बाहर वालों के प्रोग्राम हुए, लेकिन साथ ही साथ विदेशी भाई बहनों ने यहां पर कई प्रकार की तपस्याएं और रिट्रीट्स भी की हैं। और हम भारतवासी को ये मौका मिला, और जब हमें ये मौका मिला, क्योंकि बहुत भाई बहन कहा करते थे कि हमें कब चांस मिलेगा ज्ञान सरोवर में जाने का, तो आज आपने वो चांस लिया है और आप ज्ञान सरोवर में हैं। यहां पर हम आए हैं स्पिरिचुअल रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन और स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए। कहते हैं योग से क्या फायदा होता है, योग से सबसे बड़ी प्राप्ति है कि भगवान हमारा साथी बन जाता है और हम भगवान के साथी बन जाते हैं। यदि आजकल कोई भी सवाल पूछता है कि आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो क्या फायदा होता है, हम अधिकतर सुना देते हैं तनाव से मुक्ति होती है, टेंशन रिलीज होती है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन हो गया है भी। लेकिन तनाव से मुक्त तो हो जाते लेकिन वो सुख की अनुभूति नहीं होती। योग से सबसे बड़ी प्राप्ति, क्योंकि योग जो है, ये जो तनाव मुक्त जो हम हो जाते हैं, ये योग का एक फल है। योग रूपी वृक्ष पर अनेक फल हैं, उनमें से एक फल जो है वो है तनाव मुक्ति। लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये जो सुख की अनुभूति है, ये इस योग के द्वारा होती है। और उस सुख का अनुभव करने के लिए, उस सुख को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए, वो उस सुख की अनुभूति की लहरों में मैं सदा लहराती रहूं या हम लहराते रहे, उसके लिए विशेष हमें भट्टी करने आए हैं। और मुझे कुछ बात याद आ रही है उन दिनों की, जब साकार में बाबा थे। बाबा आबू से दिल्ली जाते थे और दिल्ली से जब आबू आते थे तो बाबा ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो दरवाजे के पास हैंडल होता है उसको पकड़कर खड़े हो जाया करते थे। शायद आपने ये फोटो कभी देखा भी होगा बाबा का। और दिल्ली के प्लेटफॉर्म में तो पहले से ही क्राउड तो हुआ ही करता था, तो बहुत से भाई बहन भी बाबा के मना करने पर भी बाबा को लेने भी जाते थे, रिसीव करने भी जाया करते थे। और साथ साथ बाबा जब वहां से विदाई लेते थे दिल्ली से, तो वो सी ऑफ करने भी, उनको सेंड ऑफ करने भी जाते थे। तो बाबा उस कंपार्टमेंट में हैंडल पकड़कर खड़े हो जाते और बाबा सबको दृष्टि देते और सभी दृष्टि ले रहे हैं। और जो आने जाने वाले लोग हैं, वो इतने सारे लोगों को खड़े देखकर वो चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं। तो उनके मन में बड़ी उत्कंठा होती थी। कई लोग खड़े हो जाते थे, शायद कुछ बात चलेगी, शायद कुछ बात होगी, लेकिन बाबा दृष्टि देते थे और बच्चे उस दृष्टि के लिए इतने उत्सुक होते थे। और बस दृष्टि पड़ी बाबा की, बस वो नैन मुलाकात, वो दृष्टि की मुलाकात। बाबा ने हम बच्चों को ये दृष्टि की मुलाकात, ये नैन मुलाकात सिखलाई। तो वो जो आत्मिक सुख है, जो बाबा रोज कहते हैं बच्ची अपने को आत्मा समझ कर याद करो। आपको सुमन बहन ने मौन की सारी बात सुनाई, तो उस मौन में मैं किसी को भी देख रही हूं, हम किसी को भी देख रहे हैं, उस आत्मिक भाव से देखें, वो दृष्टि का आनंद लें जो हमारी अंतर आत्मा को भरपूर करेगा। और यही अनुभूति हमें उस आत्मा परमात्मा के मिलन के सुख की अनुभूति कराएंगे। बॉम्बे के हम शोरगुल में रहते हैं, कई प्रकार की, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ के आदि हो चुके हैं। जो बहुत फास्ट चलता है उसके लिए धीरे चलना, उसमें भी थोड़ी उसको मुश्किल होती है। लेकिन हमें ये अभ्यास करना है कि हम उस आत्मिक सुख का आनंद लें। और दूसरी बात कि हम अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करते जाएं। ये इस भट्टी में भी काम में आएगा और वहां जाकर भी काम में आएगा। और सभी भाई बहन जब सुबह मुरली सुनेंगे, हर एक के पास डायरी और पेन होना चाहिए, हर एक के पास। उसमें से 10 पॉइंट्स आप अवश्य नोट करो। ये हमारी श्रेष्ठ संकल्पों का खाता। मुझे एक जगदीश भाई की बात याद आ रही है, क्योंकि जगदीश भाई के साथ बहुत बार ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी। तो एक बार वो सुना रहे थे कि जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया और बाबा ने कहा, मधुबन में था तो बाबा ने कहा, इसकी बुद्धि में तो भूसा भरा हुआ है। अब जगदीश भाई को मैं समझती हूँ सभी जानते होंगे, इतनी किताबें लिखी, पहले से उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। तो बाबा ने कहा इसकी बुद्धि में तो भूसा भरा हुआ है। कहते मैं सोचने लगा कि कौन सा भूसा भरा हुआ है मेरी बुद्धि में जिसको निकालना है। एक भूसा तो वो होता है जो गाय खाती है, वो चारा खाती है, वो भूसा भी होता है। अभी कौन सा भूसा भरा हुआ है जो मुझे निकालना है। तो समझ में आया कि जो इतना सारा ज्ञान जो पढ़ा था ना पहले बहुत सारा, उसको बुद्धि से निकालना है। और तभी ये जो रियल ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान जो है बुद्धि में बैठेगा। इसी प्रकार जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, हम अनकॉन्शियसली हमारी सब कॉन्शियस माइंड में ये बात चलती है जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है या किन्हीं गुरुओं का ये कोई कोई बातें यूट्यूब में सुनते हैं, उनसे हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में नहीं होना चाहिए। बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, तो इसीलिए अपनी बुद्धि रूपी झोली को इन ज्ञान रत्नों से भरो। और उसका एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप लिखने की आदत डालो। ये पक्का कर लो मुझे बाबा के मुरली से 10 पॉइंट्स अवश्य लिखने हैं, क्योंकि लिखने से याद रह जाता है। तीसरी बात कि एक सवाल कभी किसी ने पूछा कि योग क्या है, गुलजार दादी की बात है ये, कि योग क्या है, गुलजार दादी को ये सवाल पूछा था। तो दादी ने कहा कि योग क्या है, बस प्यार, प्यार, प्यार और प्यार। पहले क्या हुआ करता था, पहले राजयोग कमेंट्रीज ये सब कुछ नहीं होती थी, बस शांति में खो गए, बस वो प्यार से देखते रहे। मुझे वो गीत बड़ा अच्छा लगता है कि आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। बस हम बाबा को देख रहे हैं, उस प्यार में हम खो गए हैं। दादी ने उस समय एक एग्जाम्पल दिया था कि दुनिया में जब किन्हीं दो व्यक्तियों का आपस में प्यार हो जाता है तो वो घंटों तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, बातचीत कोई होती नहीं है। अरे ये तो बाबा है, ये तो कल्प के बाद 5000 साल के बाद जिससे मैं बिछड़ गई थी वो मेरा बाबा है, वो बाबा मुझे मिला है। तो बस योग क्या है, वो प्यार ही तो है। तो कहते हैं सच्ची इबादत क्या है। मुझे सुमन बहन की एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा कि अभी भक्ति की मांगने की आदत जो है ना उसको यहीं छोड़कर जाओ, अधिकार है हमारा बाबा पर। तो सच्ची इबादत क्या है, इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र नहीं, इबादत वो है जिसमें आवश्यकताओं का जिक्र नहीं, बस उसकी यानी खुदा की रहमतों का शुक्र हो। यानी सच्ची जो योग कहेंगे या सच्चा प्रार्थना कहेंगे, हम प्रार्थना नहीं कहते हैं, सच्चा योग क्या है जिसमें हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जिक्र हम नहीं करते हैं क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। हम तो केवल उस बाबा का शुक्राना करते हैं जो हमें रोज हमारी झोली भरता है। तो हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये समय मिला है बाकी सब बातों से फारिग होकर। कोई ये भी हो सकता है जो पहली बार आए हैं, लेकिन इस चीज का जो आनंद होगा वो सबसे बड़ा आनंद होगा। कभी कभी कोई कोई समझ लेता है योग जो है उसमें हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन योग की अल्टीमेट प्राप्ति तो आनंद है। इसलिए सन्यासियों ने क्या किया, अपने नाम के आगे ही आनंद लगा दिया। जैसे आपको मालूम है दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम, उनका नाम क्या था, मूलचंद, उनका नाम कोई दयानंद सरस्वती नहीं था। ऐसे विवेकानंद जी, उनका नाम क्या था, नरेंद्र, और बाद में उसका नाम क्या पड़ा, विवेकानंद। तो वो अपने नाम के आगे आनंद शब्द जोड़ देते हैं क्योंकि योग की जो अनुभूति है वो है आनंद, आनंद आनंद परम आनंद। तो उस परम आनंद का हमें अनुभव करना है इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि हम सब यहाँ से बहुत अच्छी तपस्या करके जाएंगे और ये तपस्या का स्वतः ही नेचुरल फल जो है वो दूसरों को दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुंदर शब्दों में हम सबको प्रेरित किया है तप के लिए कि हम भी अब आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाएं। नाम के आगे आनंद की आवश्यकता नहीं, आंतरिक अवस्था ही आनंदमय हो जाए। और योग केवल प्यार प्यार और प्यार, एक के प्यार में हम डूब जाएं, समा जाएं। तो अब मैं उनकी ओर ही आपको लिए चल रहा हूं जो मगन रहती हैं, समाई रहती हैं, जिनके दिल में हमेशा एक सुंदर गीत, अनुभव युक्त गीत बजता रहता है कि ढूंढा सारे संसार में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा पाया तो अब पता मेरा नहीं। तो उनका पता पाकर जो अब अपना पता भूल गई हैं, उनके प्यार में मगन सच्ची सच्ची मीरा, आदरणीय मीरा दीदी, सांता क्रूज सब जोन की निदेशिका, सैटविंग की वाइस चेयरपर्सन, बहुत सारी ट्रस्ट और अनेक स्थानों पे आपकी अहम भूमिका सेवाओं में, और इसीलिए अनेक पुरस्कारों सम्मानों से सम्मानित, विशेष समाज सेवा के लिए दादा साहब फाल्के सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। ऐसी आदरणीय मीरा दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो इस भट्टी के लिए अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सबको प्रदान करें। मीरा दीदी।
ओम शांति। थैंक यू रूपेश भाई। मंच पर उपस्थित विश्व सेवा की प्रतिमूर्ति महाभिनिष्क्रमण करने वाली बाबा, जिनको कहते थे निर्मल आश्रम, मम्मा जिनको कहते थे बनी बनाई देवता, बताइए कौन? जोर से बोलिए, निर्मला दीदी जी। ऐसी हमारी त्यागी तपस्वी विश्व सेवाधारी निर्मला दीदी जी। बाबा निर्मला दीदी जी को कहते थे डबल डॉक्टर है आप, ऐसा कहते थे बाबा, है ना दीदी? बाबा ने कितनी बार ऐसे कहा है, तो बाबा कहते थे कि डबल डॉक्टर है आप, क्योंकि दीदी डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुंबई से, और आत्मा के डॉक्टर बन गए, ज्ञान में आ गए 1962 में। 60 साल हो गए, सभी तालियां बजाए दीदी के लिए, 60 साल हो गए, कोई कम नहीं है। सभी खड़े होकर दीदी को सम्मानित करेंगे और बहुत ही ढंग से ताली बजाएंगे। 6 बार हो गया क्योंकि 60 इयर्स दीदी को पूर्ण हुए हैं। तो ऐसी हमारी निर्मला दीदी जी, सुमन बहन जी, कमलेश बहन जी, जैसे नाम वैसे गुण, संजय भाई, रुपेश भाई, और आप सभी विघ्न विनाशक, पद्मा पदम भाग्यशाली, ब्राह्मण कुलभूषण, कैसे यहां से बाहर निकलेंगे 28 को विजयी रत्न बनकर? क्या सभी बन जाएंगे विजयी रत्न? और बाबा ने एक शब्द कहा है सफलता मूरत। इतना अच्छी तरह से यहां पर सभी ज्ञान, योग, धारणा और मनसा सेवा और भी सेवा, चारों सब्जेक्ट से स्वयं को यहां पर माला माल करके जाएंगे। तो यही एम रखनी है कि यहां पर हम चारों में माला माल हो जाए, संपन्न हो जाए, जिससे हमें तृप्ति हो जाए। ज्ञान में हम सभी चल रहे हैं, इतना सालों से चल रहे हैं, कल्प कल्प हम चलते आए ज्ञान में। त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी आप है सभी, आपका ही गायन है, हम सभी का ही गायन है। ऋषि मुनियों ने क्या तो तपस्या की जंगलों में जाकर। भारत देश की आध्यात्मिक ये बहुत ऊंचे थे ऊंची श्रेष्ठतम ये विरासत है, तो हम सभी बच्चे भी वारिस है इसमें। और बाबा तो हमें करण करावनहार, आज की मुरली में था ना कि बाबा है रचयिता बाबा और करण करावनहार बाबा है। तो बाबा ने तो हमें कहा ही है कि बच्चे रूहानी यात्रा करो, आज ही याद दिला दिया, आज की मुरली में ही है। और जो सुमन बेन ने सुनाया संस्कार परिवर्तन, तो बाबा ने आज वरदान में कहा है कि जो हमारे पुराने संस्कार है और जो भी विघ्न है वो हम शक्ति जब एकत्रित करते हैं बाबा की याद से, रूहानी यात्रा से, योग में हम रहते हैं, तो हम शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। और जब हम शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं तो हमारी अवस्था इतनी सुंदर हो जाती है, हम बिल्कुल अचल, अडोल, एक रस बन जाते हैं। और यही तो बाबा कहते हैं बनने के लिए। तो यहां पर सभी अशरीरी बनकर के रहेंगे, अव्यक्त मूरत बनकर के रहेंगे, देही अभिमानी होकर के रहेंगे। और जो बाबा ने हमें कहा है कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक हमें बनना है, गुणवान हमें बनना है। बाबा है गुणों के भंडार, तो बाबा से हम गुण लेते जाए लेते जाए लेते जाए। योग हम करते हैं तो आत्मा प्योर हो जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। तो ऐसी शांति का और प्योरिटी का, आत्मशुद्धि का ये फिल्टर प्लांट है यहां पर, जिससे आत्मशुद्धि हो जाएंगी। तो सभी इस बात की बहुत ही ध्यान रखेंगे, इसी पुरुषार्थ पर और स्वयं पर अटेंशन देंगे। और जो भी यहां पर योग करेंगे, माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे, पूरा माइंड उसमें हो, जरा भी मन और बुद्धि यहां से, बाबा ही हमारे संसार में है, बाबा ही हमारा संसार है, उससे बाहर हमारी बुद्धि ना जाए। गुलजार दादी जी की एक बात याद आती है, दादी जी ने क्लास में एक बार कहा कि बाबा को दिल में रख दो। इतना सरल रीति से दादी जी ने कहा कि बाबा को दिल में रख दो, व्यर्थ विचार, एक भी व्यर्थ विचार को आने न दो, और कारोबार वो तो लास्ट श्वास तक चलेगा, ये दादी जी ने कहा था। तो हमें ध्यान यही रखना है कि यहां पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार हो, और श्रेष्ठ विचार तो आपके रहेंगे ही, क्योंकि यहां का वातावरण कितना सुंदर है, कितना पवित्र वातावरण है, आने से ही दिल मन खुश हो जाता है। लोग तो चाहते हैं ज्ञान सरोवर आने के लिए, तो आप तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो कि गोल्डन चांस यहां पर आने का आप सभी को मिला, क्योंकि यहां पर संख्या की लिमिटेशन है। तो ऐसे हम ईश्वरीय संतान यहां पर साधना करेंगे, तपस्या करेंगे बहुत अच्छी तरह से, और एक सुरक्षा कवच अपने आसपास हो जाएगा, ज्वालामुखी भट्टी हो जाएंगी जिसमें विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो सभी इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जानकी दादी जी एक बार मुंबई आए थे और एक शिक्षण संस्था है वहां पर बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, सोमैया का पूरा कैंपस था बहुत बड़ा और ऑडिटोरियम था और उसमें सारे संत सभी आए हुए थे। तो दादी जी उस समय विदेश से आते रहते थे, तो दादी जी को कहा आप वहां से आते हैं इतना आपको जेटलेग नहीं लगता है, एरोप्लेन में बैठ करके आते हैं, टाइम का फर्क होता है तो थकावट नहीं होती है? तो पता है दादी जी ने क्या जवाब दिया? जानकी दादी जी ने कहा कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं पीस पैलेस में बैठ जाती हूं। जैसे ही मुझे, रिपीट कर रही हूं, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं पीस पैलेस में बैठ जाती हूं, शांति महल में बैठ जाती हूं। तो ये शांति महल है, पीस पैलेस है ये, कि जहां पर आत्मा को बहुत अच्छी तरह से शांति जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। और दूसरी बात एक बार जानकी दादी जी ने बहुत सुंदर कही थी, सांता क्रूज का ही सारा था परिवार, भाई बहन सारे। तो दादी जी ने एक बात कही थी कि जब यहां पर आते हो तो उस समय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जिस वातावरण में हम बैठे हैं तो सिर्फ यहां का ही सोचना है कि हम और बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, और तीसरा न कोई। फिर यहां बैठ करके मुंबई में वहां पर क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन वहां क्या कर रहा है, ये विचार, ये संकल्प कहा कि वो ना हो। तो ये बहुत सुंदर बात सिखाई कि जिस क्षण हम जहां पर हाजिर है, प्रेजेंट है, वही हमें विचार करना है। माना इतना एकाग्र बुद्धि हो जाना है, ये तब होता है जब लगन होती है। तो तीन बातों की आवश्यकता होगी, एक तो बाबा के साथ हम सभी का बहुत प्यार है तो प्यार हो, योग के लिए यही तो आवश्यक है, दूसरा लगन हो, और तीसरा दृढ़ संकल्प हो। ये तीन बात होंगी तो बहुत अच्छी तरह से आपका जो यहां पर समय इतना अनमोल है जीवन के अंदर, तो ये अनमोल समय आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा परंतु इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम यहां पर समय हमारा अनमोल इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, आत्मा की कमाई के लिए यहां पर आए हैं, और ये कमाई बहुत सुंदर रीति से हो। तो एक इंटेंस, बहुत ही गहरा, बहुत घना प्रभाव होगा, इंटेंस इफेक्ट हो, जिससे हमारे वाइब्रेशंस निकले योग से, वो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति के और आनंद के निकले। तो इस बात का भी सभी बहुत बहुत यहां पर ध्यान रखेंगे। और मम्मा का मैंने हमेशा देखा था मुंबई में, थोड़ा सा तबियत ऊपर नीचे हो वो भी बिल्कुल साइड पे था, लेकिन एक्यूरेट टाइम पे मम्मा आकर के क्लास कराते थे, इतना मधुर वाणी में सुंदर क्लास। तो ये बात हमें ध्यान पे रखनी है कि यहां पर स्टेज पर, मंच पर कोई आ जाए भट्टी कराने के लिए, तो उसके पहले आप लोगों को 5-10 मिनट एटलीस्ट, योग में तो आना ही है, लेकिन कुछ कारणवश ऊपर नीचे हुआ तो भी स्पीकर के पहले आप सभी जरूर यहां पर एक्यूरेट टाइम पर आकर के बैठ जाएंगे, ताकि अच्छी तरह से आप पूरा लाभ जो है वो ले पाएंगे। और लास्ट में एक बात कहती हूं कि बहुत अच्छी तरह से अपने आप को यहां पर शक्ति संपन्न करके ही जाएंगे। एक बार गांधी जी ने सॉलिसिटर फ्रेंड को कहा था एक बात, वो जा रहे थे प्रार्थना पर, तो मित्र ने कहा टाइम वेस्ट क्यों करते हो? तो गांधी जी ने कहा आप भोजन करते हो? तो कहा हां। नहीं करूंगा तो कैसे मुझे केस कैसे लड़ूंगा, क्योंकि सॉलिसिटर मित्र ने ये कहा था कि गांधी जी को कि आप जो है वो क्यों टाइम वेस्ट करते हो, आपके तो देश की बहुत सेवा करनी है। तो फिर गांधी जी ने सामने ऐसा प्रश्न पूछा तो तुरंत गांधी जी ने कहा कि बस मैं भी इसीलिए करता हूं प्रार्थना कि इससे मुझे शक्ति मिलती है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। तो हमको भी यहां पर सारे विश्व की सेवा के लिए क्या करना है, ये चार दिन में क्या करना है, शक्ति बहुत अच्छी तरह से हमें जमा करनी है जो सारी लाइफ हमें हमेशा कार्य में आए और हम बहुत अचल अडोल अवस्था में रहे और हमेशा मुंबई के अंदर या कहीं भी आप हो लेकिन पूरा जीवन एक दृढ़ संकल्प करना है कि हम फील गुड करें हमेशा, कभी भी फील बैड ना करें और फीलिंग फ्लू की बीमारी में हम ना आए, वो शक्ति यहां से लेकर के जाए। क्योंकि मुंबई के लोगों का खास अभी बीच में निकला था सारा चार्ट डेटा तो कहा कि मुंबई के लोग सेंसिटिव बहुत है। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, माना जल्दी से बुरा लग जाता है, जल्दी से वो हो जाता है, तो ये फीलिंग बैड जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए सभी इस बात का भी बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें फील गुड हमेशा करना है, हमारी फीलिंग हमारे इमोशंस हमारी मेमोरी में हमेशा क्या रहे, फील, बोलिए सभी क्या रहे, फील गुड, हमेशा अच्छा ही हमें महसूस करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया मीरा दीदी, हम सब फील गुड करने वाले हैं इसलिए मुस्कुराते हुए चेहरे से यहाँ भी तपस्या करेंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे से मुंबई में रहेंगे ताकि जो फील बैड कर रहे हैं, बैड फीलिंग में है, उनको भी देख करके आपको लगे कि नहीं हमें भी मुस्कुराना है ना। अभी भले मास्क के अंदर आपकी मुस्कान नहीं दिखती लेकिन आंखें भी तो मुस्कुराती हैं ना, तो आंखों से पता चल जाता है। तो ये मुस्कान तपस्या में भी, जैसे कमलेश दीदी भी कह रही थी कि बहुत गंभीर नहीं लेकिन प्यार से डूबे हुए हमें ऐसे तप करना है। तो बहुत सुंदर सी बात दीदी ने कही है, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना है, एक एक पल ऐसा इन्वेस्ट जो सारा कल बहुत सुंदर रूप से हमें संपन्न बनाने वाला हो। ट्रैफिक कंट्रोल का वक्त हो रहा है, हम सब बाबा की याद में बैठ के आगे बढ़ेंगे। प्यारे बाबा की याद के साथ आइए भट्टी का सुंदर आगाज, बाबा के आह्वान के साथ सुंदर दीप प्रज्वलन की विधि से करते हैं। दीप प्रज्वलन की विधि विधिवत हमें याद दिलाती है परम दीप दीपराज बाबा की, जिनकी स्मृति में हमें समाये हुए रहना है और अपने आत्मदीप को भी सदा जागृत रखना है। मैं आदरणीय दीदी से, मीरा दीदी से, कमलेश बहन जी, सुमन बहन जी, संजय भाई जी और साथ ही हमारी सभी टीचर्स बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन के सुंदर विधि में शरीक होंगे। और आप सब भी अपने मोबाइल का सदुपयोग आज कर सकते हैं, उसे निकालें और उसका टॉर्च जला लें और खड़े होंगे अपने अपने स्थानों पर और इस सुंदर दीप प्रज्वलन की विधि में हम सब शरीक होंगे इस संकल्प के साथ कि आत्मदीप जलाकर परमात्मा दीपराज बाबा की याद में हम मग्न होंगे। सभी अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर ऊपर उठा लेंगे और टीचर्स बहने सभी मंच पर आएंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
सभी बहनों से निवेदन है कि लाइन में खड़े होकर के सभी को दृष्टि दें।
परिवार परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये दीप प्रज्वलन, दीपक हमेशा ऊपर की ओर उसकी लौ होती है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा ऊपर की ओर, उन्नत अवस्था की ओर, परम धाम की ओर और परमात्मा की ओर अपनी निगाहें टिकाए रखनी है। जब उसे देखते रहते हैं तो सहज ही हमारा जीवन उन्नत होता चलता है। तो आत्मदीप जलते रहें, जगमगाते रहें, हम बाबा को और बाबा हमें याद आते रहें जब तक जीवन है। दुआ है हमारी कि आप यूं ही ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाते रहें। तो इस सुंदर दीप प्रज्वलन के पश्चात आइए अब उनकी ओर चलते हैं, जो हम सब गणपतियों के लिए महागौरी स्वरूप हैं, जिन्होंने हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से ही पालना प्रदान की है, कर रही हैं, जिनके अंतर मन में हम सबके लिए अनंत स्नेह है, प्यार है, जो अपने जीवन से सिखाती हैं। मैं देखता हूं दीदी इतनी व्यस्त रहती हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एशिया पैसिफिक रीजन के सभी कारोबारों को देखना, आईटी विंग, ज्ञान सरोवर, आप जानते हैं, इन सबको दीदी इतनी सहजता से, सरलता से करती हैं और हमेशा अवेलेबल रहती हैं हम सभी के लिए। तो ऐसी दीदी के लिए मैं क्या कहूं, विशेषताओं से संपन्न हमारी दीदी, दीदी आप में हमें खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी से आपकी हमें सुकून भरपूर मिलता है। जिस अलौकिक माता पिता को देखने के लिए तरसते थे ये नयन, आपकी छवि में हमें उन्हीं माता पिता का स्वरूप दिखता है। तो ऐसी परम आदरणीय महागौरी स्वरूपा हमारी दीदी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत भी और धन्यवाद भी, जिन्होंने आज हमें यहाँ आने का, भट्टी करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। अनुरोध करूंगा दीदी हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें, आदरणीय दीदी।
ओम शांति, आप सभी का फिर से स्वागत है। भट्टी में आए हैं तो अनुभवी बन के जाना है और जाकर औरों को अनुभवी बनाना है। ज्ञान सुना भी बहुत है, सुनाया भी बहुत है। यहाँ देखना कि मैंने बाबा से किस संबंध का अनुभव नहीं किया है, सर्व संबंध का अनुभव है या सर थियोरेटिकली बुद्धि में है। माता पिता, बंधु, सखा, साजन, टीचर, गुरु, बच्चा, सर्व संबंध का यदि अनुभव कर लिया है तो आप देखेंगे नष्टो मोह हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बाबा ने बता दिया है लास्ट पेपर होगा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, पेपर बता दिया, टाइम नहीं बताया कब होगा। तो देखना है मैं नष्टो मोह हूँ मेरा लगाव है ही शरीर के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ, सेंटर के साथ, अलौकिक परिवार के साथ, मेरा क्या है? मेरा मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया या मेरा कुछ है? तो मैं और मेरा, ये दोनों हमने त्याग किया है। और विशेष अमृत वेला, आप ये बुद्धि में रखना कि हमें बिंदी बनकर बिंदी की याद में समा जाना। जो बीज रूप स्तुति का अनुभव है, जो शक्तियों का पाने का श्रेष्ठ समय है, वो हमें कोई न कोई शक्ति एम रखनी है कि आज मुझे बाबा से ये शक्ति लेनी है, आज मुझे बाबा से ये प्यार लेना है, ये संबंध का अनुभव करना है। तो सारा दिन प्रयोग भी करना है और आत्मिक दृष्टि तो होनी ही है, पर साथ साथ यहां से परिस्तार ड्रेस की सौगात ले जा। चलते फिरते मैं फरिश्ता हूं, ये शरीर का भान भूल जाए और लाइट का शरीर में हल्के बन के चलते फिरते रहो। तो जब आप यहां ये अभ्यास करेंगे, वो अभ्यास फिर घर में करना भी सहज हो जाएगा। तो भट्टी यहां पूरी नहीं करनी है, भट्टी जैसे हमारी पढ़ाई अंत तक है, हमारी भट्टी भी अंत तक हो। क्योंकि क्या है, सेवा का उमंग सबको है, परंतु योग में बाबा कहते हैं माया विघ्न डालती है। तो ये देखना है कि योग हमारा कम से कम 8 घंटा तो रहे। कर्म योगी जीवन है, वहां जाकर भी ये ध्यान में रखना है हमारा कर्म योगी जीवन रहे। तो जितना अपने पर यहां अटेंशन रखेंगे तो वापस जाएंगे आपको देखकर, आपके परिवार वाले आश्चर्यचकित हो जाए कि ये तो फरिश्ता बनकर आया। ऐसे कोई ना कहे कि जैसे थे वैसे ही आए, नहीं, परिवर्तित होके जाना है। और एक एक सेकंड का लाभ लेना है। जैसे आपको बताया गया 3 चीजों का मौन रखना, घर की चिंता छोड़ देना, सेंटर का ख्याल 3 दिन छोड़ देना, और मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं, ये 3 दिन पक्का रखना। और शिव शक्ति कंबाइंड, यहां भी होके रहना वहां भी वो ही रूप में रहना। बाबा की शिक्षाएं जीवन में लानी है, अपने जीवन में डिसिप्लिन रखनी है और जल्दी आना है टाइम पर। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी हमारी डबल डॉक्टर हैं, तो हम सबके तन का मन का दोनों का ही बहुत ध्यान रखती हैं। तो दीदी ने जो प्यार से शिक्षा दी है और सौगात भी आपको पहले दे दी, स्थूल से पहले सूक्ष्म सौगात, कौन सी? फरिश्ते की ड्रेस, राइट? तो इसे कमरे में नहीं रखेंगे, अलमारी में नहीं रखेंगे, लेकिन सारे दिन पहन करके अपने साथ रखेंगे। और आप सबको तो एक विशेष नशा होगा ना कि दीदी बॉम्बे से हैं, तो एक बार जोरदार ताली तो इस नशे के लिए कि बॉम्बे ने ऐसा अमूल्य रत्न यज्ञ को दिया है हमारी प्यारी दीदी जैसा। तो दीदी जी के लिए मीरा बहन जी ने जैसे कहा था वैसे ही बाबा ने कहा कि यदि मुझे डॉक्टर निर्मला जैसी 21 कुमारियां मिल जाएं तो मैं संसार को स्वर्ग बना दूं। तो ऐसी दीदी के लिए जोरदार तालियां तो हम बजाएं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूति हमारे सम्मुख हैं, हमारे साथ हैं, रोज हमें मुरली सुनाएंगे, हमें योग कराएंगे और उनकी छत्र छाया में हम सब ये गहन सिद्धि स्वरूप भट्ठी करेंगे। तो इसे हम जरूर बहुत गहराई से इन शिक्षाओं को अपने अंतर मन में समाते हुए यहां से वैसे बनकर जाएं जैसे हमारे बड़े, जैसे बाबा चाहते हैं।